ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इसमें 75 देशों से आए लगभग 6,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा कि भारत आधुनिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार प्रौद्योगिकी और परंपरा इस राह पर आगे बढ़ने का मंत्र है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापट्टनम के निकट पुदुमदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में जारी है। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि आज पहले दिन संबंधित मंत्रालय इस बारे में सिर्फ जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी और उसके आधार पर आगे बढ़ने का फैसला करेगी। असम में दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो में अवैध कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के लिए गहन खोज और बचाव अभियान जारी है। सोमवार को उमरांगसो के 3 किलो में अवैध रेट होल कोयला खदान में 100 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। राज्य सरकार ने बचाव अभियान में सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद के लिए नौसेना के गोताखोरों की सहायता मांगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित अत्यधिक व्यय के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में सभी तरह की सुविधाओं के लिए जनता का पैसा खर्च किया गया है। उधर कांग्रेस ने सत्ता में आने पर शहर में लोगों की सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा देने का वादा किया है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन ममून ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि वार्ता सार्थक रही, इससे भारत मालदीव संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। मराठी भाषा को सरकारी संकल्प जारी कर आज आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। महाराष्ट्र के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। श्री सामंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसके लिए धन्यवाद दिया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें चलाई जाएंगी। बांग्लादेश के आव्रजन और पासपोर्ट विभाग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि वे लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में हुई हत्याओं में कथित रूप से शामिल थे। मुख्य सलाहकार के प्रेस उपसचिव अब्दुल कलाम आजाद ने कल शाम ढाका में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। बैडमिंटन में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणॉय मलेशिया ओपन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को पराजित किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।